नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पञ्च नमो यारु सव्व पाव प्रणासनु मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि
परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। चार रविवार हुए हैं धर्म कथा का, यहां पर एक क्रम चल रहा है। धन्य कुमार चरित्र जिसका नाम है, और इसमें अपन मंदिर जी से मूर्तियों की चोरी से लेकर उस चोर के पाप का फल विभिन्न गतियों में, और फिर अंत में नरकों की तिर्यंच गति की यात्रा करके उसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया। वहां भी किस प्रकार उसके जीवन में अभाव खटकते रहे उसका सारा वर्णन सुना। अंत में सौभाग्य से उसको गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसकी मां ने गुरुवर सुव्रत मुनिराज को, जो मासोपवासी थे, एक महीने का उपवास करके आए थे, खीर का आहार कराया और फिर अगले दिन उन्हीं गुरु के उपदेश को गुफा के बाहर बैठकर इस बालक ने सुना और व्रत धारण की भावना करके मां से अनुमति लेने घर की ओर चला। जंगल में उसको शेर ने खा लिया और फिर देवगति में सौधर्म स्वर्ग में एक वैभवशाली रिद्धिधारी सम्यक दृष्टि देव बनता है। उसके बाद फिर धरती पर आता है, मां को संबोधित करता है और मां उस गांव का मुखिया बलभद्र, सारा कुटुंब व्रतों को धारण करके तपस्या करके अंत में सौधर्म स्वर्ग में आ जाता है। वहां से फिर ये लोग सब जब पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं तो जो गांव का मुखिया बलभद्र था वो तो एक संपत्तिशाली सेठ बनता है और जो मृष्टदाना का जीव था जिसने मुनिराज को आहार दान दिया था वो उसकी पत्नी प्रजावती बनती। फिर वो जो पुराने देवदत्त आदि जो सात लड़के थे मुखिया के, जो इसको परेशान किया करते थे, अकृत पुण्य को मारते पीटते थे, खीर मांगता था और वो मारते थे, वो उसके सात पुत्र बनते हैं। और फिर ये जो अकृत पुण्य का जीव था वो अंत में वहां स्वर्ग से आकर के इनका सबसे छोटा पुत्र धन्य कुमार बनता है। और धन्य कुमार वैसे तो बड़ा सुखी था, कोई अभाव नहीं था, सब कुछ उसको मिल रहा था। पैदा होते बगीचे से खजाना निकला, फिर कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा घड़ा निकला अंदर सिक्कों से भरा हुआ। लेकिन भाई लोग उससे चिढ़ते थे और भाइयों के षड्यंत्र के कारण अंततः धन्य कुमार को घर छोड़कर भाग जाना पड़ता है। और हुआ ये, वो घटना आपको याद होगी कि जब बावड़ी में पानी में खेलने के लिए, जल क्रीड़ा के लिए सब निकले आठों भाई, तो फिर उन्होंने एक पहले से योजना बना करके रखी थी कि आज इसको अपन पानी में डुबा देंगे। तो वो आपस में झूठ मूठ लड़ने लगे कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले पानी में कूदूंगा, और फिर अंत में उसको फंसा दिया धन्य कुमार को। वो जैसे ही पानी में कूदा तो उसके ऊपर एक चट्टान डाल दी और जब बहुत देर हो गई और कोई अंदर से पानी से कुछ भी ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने में आई तो वो लोग वापस घर आ गए। और यहाँ धन्य कुमार पानी में डूबता डूबता पत्थर के वजन के नीचे महामंत्र नमोकार का स्मरण कर लेता है और उसी समय जो जल देवता है वो उसको वहां पर सुरक्षित कर लेता, पानी के अंदर मरने नहीं देता। और उसके बाद जब वो सब भाई लोग चले जाते हैं तब इसको नए वस्त्र पहनाकर एक सिंहासन पर बैठा कर पानी से बाहर निकालकर निवेदन करता है कि मृत्यु काल में लोगों का धैर्य टूटता है, लोग घबरा जाते हैं और उनको सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए इस समय, लेकिन चूंकि तुमने धीरज रखकर महामंत्र का स्मरण किया है इसलिए तुम्हें धर्म श्रद्धालु जानकर मैंने मरने से बचाया है। और कभी भी तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में इतनी अटूट श्रद्धा है नमोकार मंत्र के प्रति कि मृत्यु जैसा संकट आ जाए तो भी बेधड़क नमोकार मंत्र का स्मरण हो हृदय में, उसकी सेवा में देवता लोग उपस्थित रहते हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। धन्य कुमार पहले सोचता है कि माँ के पास जाऊं, पर फिर लगता है कि नहीं, पड़ोसी दुश्मन हो तो घर वाले एक होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं, घर में ही दुश्मन हो तो वहां रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए अब मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे मारने का आज षड्यंत्र किया, इसलिए अब मैं वहां नहीं जाता। और राजगृह नगरी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ घटनाएं होती है, मुनिराज से मिलन होता है, मुनिराज उसके पूर्व जन्मों का वर्णन करके उसको सारी बातें समझाते हैं, और धन्य कुमार अंत में आगे बढ़ता हुआ राजगृही नगरी में पहुंचता है, और जिस बगीचे में वो विश्राम करने के लिए लेटता है वो हरा भरा हो जाता है। बड़े लंबे समय तक सूखा था बगीचा, पर इसके आते ही साथ हरा भरा हो जाता है। तो वहाँ के पहरेदार तत्काल मालिक को सूचना देते हैं और इसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। इनकी बातचीत सुनकर धन्य कुमार की आंख खुलती है, पूछता है कि आप लोग मुझे घेर कर क्यों खड़े हो और क्या चर्चा कर रहे हो आप लोग। तो फिर वो लोग बताते हैं कि हम यहाँ के मालिक के सेवक हैं और आप चलिए मालिक ही सब कुछ बताएंगे आपको। तो फिर कुसुम दत्त नाम का जो वहाँ का मालिक था वो उसको धन्य कुमार को बताता है कि हमारे यहाँ पर अकस्मात एक बार ये बगीचा उजड़ गया। बहुत हरा भरा बगीचा था ये शुरू में, लेकिन उजड़ गया। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि क्या कारण है कि मेरा बगीचा बिल्कुल उजड़ गया, इसमें न फूल लगते हैं न फल लगते हैं, पेड़ पौधे सब सूखे हुए हैं, क्या कारण हो गया। तब मैंने एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, तब उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के आने पर यह बगीचा पुनः हरा भरा हो जाए बस वही तुम्हारा जमाई होगा। जमाई का अर्थ मालूम है आपको? जामाता दशमो ग्रह। नौ ग्रह तो आसमान में विख्यात है, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं ना, सूर्य चंद्र राहु केतु बुध गुरु शुक्र मंगल शनि, ये नौ ग्रह तो प्रसिद्ध है। जामाता दशमो ग्रह, जमाई होता है वो दसवां ग्रह होता है, बोले तो वो तुम्हारा जमाई बनेगा। लेकिन यहां पर दसवें ग्रह वाले वो खतरनाक बात नहीं थी, सिर्फ एक शुभ संकेत था, एक भविष्यवाणी थी। तो फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइए। और फिर खूब अच्छे से उसको अपने घर में रखता है। धन्य कुमार भी वहीं रखता है। बोले कि मैं तो राजगिरी नगरी घूमने आया। बोले तुम ठहरना यहाँ पर, घूमते रहना, फिर जब भी जहाँ घूमना हो तो। और धन्य कुमार जहाँ जहाँ घूमने जाता वहाँ वहाँ लाभान्वित होता है। मुनिराज के वचन स्मरण में आते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में दान की अनुमोदना की थी, मुनिराज के आहार दान की मैंने हृदय से प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदना की थी, तो उसका परिणाम मुझे ये मिला है। और मुनिराज ने यह भी कहा था कि कभी भी अवसर मिले तो दान पूजा से पीछे मत हटना। जिस गृहस्थ के घर साधु के चरण नहीं पड़ते उसका गृहस्थाश्रम पत्थर की नाव है, पत्थर की नाव पानी में नहीं तैरती, वो गृहस्थ जीवन उसको संसार में डुबाने वाला है। और साधु के चरण जहां पड़ते हैं, आचार्य जयसेन स्वामी ने समय सार प्रवचन सार पंचास्तिकाएं की टीका लिखी है, आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि जिसके घर साधु के चरण पड़ते हैं उसको साधु से भेद और अभेद रत्नत्रय की जानकारी मिलती है और आत्मकल्याण का मार्ग उसकी समझ में आता है, उसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो धन्य कुमार जहां जहां जाता था लाभ होता था, उसने राजकुमारों को भी पराजित कर दिया। एक बार खेल खेल में राजकुमारों को भी पराजित कर दिया। तो श्रेणिक राजा का एक पुत्र था जो उसकी जो पटरानी तो चेलना थी, लेकिन पहली जो रानी थी नंदश्री जिसका नाम था, उसका बेटा था अभय कुमार, और अभय कुमार की जिनको कथा पता हो तो वो असाधारण बुद्धिमान था। कोई भी सवाल उसके सामने रख दो, टेढ़े से टेढ़ा सवाल, वो बस ऐसे चुटकी बजाते हुए बस इतनी सी बात फटाक से उसका समाधान कर देता था। एक बार राजा श्रेणिक ने खबर भेजी कि मेरे हाथी का वजन निकालो, बोले तो उस टाइम ये धर्म कांटा और कोई ऐसे दूसरे आधुनिक साधन नहीं थे, लेकिन अभय कुमार ने उसका वजन निकाल के बता दिया। कैसे बताया? तो उसने एक नाव में, बड़ी नाव ली और तालाब के अंदर हाथी को उस नाव पर चढ़ा करके धकेल दिया नाव। अब नाव जितनी डूबी पानी में, पूरी नहीं डूबी नाव, तो अच्छी नाव थी, तो उसमें ऐसे निशान लगवा दिया, पानी यहां तक के आया। फिर हाथी को बाहर निकलवाया और उसके अंदर पत्थर भरवा दिए। जब उस निशान तक पानी दोबारा आ गया, उन पत्थरों को तौलवा दिया, यानी उन पत्थरों को तराजू से तुलवा दिया, तो फिर वो हाथी का वजन आ गया। ऐसे बड़े बड़े विचित्र प्रश्नों के समाधान उसने अकेले बिल्कुल चुटकी बजाते बजाते कर दिए थे। उस अभय कुमार को धन्य कुमार से ईर्ष्या हो गई। क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को थोड़ा आगे बढ़ता देखता है तो उसके अंदर जलन पैदा हो जाती है, और उसका परिणाम यह निकला कि अभय कुमार उससे चिढ़ता था। और वो जो पुष्पावती थी, कुसुम दत्त की बेटी, वो रानी की जो बेटी थी गुणवती, राजा श्रेणिक की पुत्री थी, उसकी सहेली थी। तो गुणवती से भी धन्य कुमार के बारे में जब चर्चा होती थी तो गुणवती को लगता था कि मेरा भविष्य भी ऐसे ही धन्य कुमार जैसे वर मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसे कि उसके मन में कुछ कल्पनाएं होती रहती थी। और राजा श्रेणिक जानता था इस बात को, लेकिन जब अभय कुमार से चर्चा हुई तो अभय कुमार ने ईर्ष्या के कारण बोला कि उस अनजान परदेशी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। वो भले गुणवान हो और बड़ा पुण्यशाली हो, लेकिन ऐसे अजनबी के साथ मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। और उसको तो मरवा डालना चाहिए, बोले बेकार का, यहां पर आकर के सब अपने नगरवासियों को भ्रमित कर रहा है, बोले सबको आकर्षित कर लेता है वो। राजा बोलते हैं कि अरे अभय कुमार, तुम्हारे जैसा विद्वान और चतुर मंत्री, मंत्री पद भी था अभय कुमार के पास, और तुम युवराज भी हो, मेरे पुत्र भी हो, तुम ऐसी कैसी बातें करते हो? राजा श्रेणिक भी समझदार था, बहुत होशियार था, तो राजा श्रेणिक को भी लगा कि जरूर कोई बात है इसके मन में, कुछ ऐसा इनका आपस में कहीं पटती नहीं है, ऐसा जरूर कोई ना कोई कारण है। तो फिर अभय कुमार फिर अपनी बात को संभालते हुए बोलता है कि ठीक है, एक उपाय हो सकता है कि मेरी बहन का विवाह उसी के साथ होगा, अपन एक घोषणा करवा दें, जो राक्षस भवन में रात भर ठहर कर वापस सुरक्षित लौट आए। मन में सोच रहा था अभय कुमार कि आज तक कोई नहीं लौटा, ये कहां से लौट आएगा। और जैसे राजा ने ये बात मंजूर की, स्वीकार की, तो फिर नगर में घोषणा हो गई कि रात भर जो राक्षस भवन में ठहर कर आएगा उसको राजा की पुत्री दी जाएगी और आधा राज्य भी दिया जाएगा। अब वहां कौन अपनी जान जोखिम में डाले, सब लोग घबरा गए, ये पता नहीं कैसा विचित्र राजा का दिमाग चला है। सब लोग समझ रहे थे कि राजा का ही ऐसा विचार है, लेकिन था विचार अभय कुमार का। और धन्य कुमार के कानों तक जैसी बात पहुंची तो धन्य कुमार ने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार एक आजमा करके देखें। धन्य कुमार तैयार हो गया। जैसे ही धन्य कुमार तैयार हुआ तो जितने लोगों के उसके साथ संबंध होने वाले थे, यानी जिन्होंने मतलब ठान लिया था, शालीभद्र ने सोच लिया था कि मेरी बहन की शादी इसके साथ होगी, और फिर वो जो 3000 सिक्के वाला जो सेठ था उसने भी ऐसे ही सोचा था कि वो तो घोषित था कि उसकी पुत्री का विवाह धन्य कुमार से ही होगा, और फिर वो जो कुसुम दत्त था उसको भी मालूम था, अवधिक ज्ञानी मुनि ने कहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी इसी के साथ होगी। तो ऐसे जितने रिश्ते बने थे उन सब कन्याओं ने मन में विचार कर लिया कि यदि वो लौट करके नहीं आए तो फिर या तो हम अपने प्राण त्याग देंगी या फिर दीक्षा ले लेंगी, ऐसा कुछ विचार उनने कर लिया था। और धन्य कुमार जब जा रहा था तो बहुत लोग मना कर रहे थे कि तुम क्यों इन बातों में आ रहे हो, क्या करना है राज्य से और फिर क्या करना है राजकुमारी से, बोले जीवन हो तो सब कुछ है। धन्य कुमार बोले कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो। लेकिन उनमें से कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, तो धन्य कुमार बोलता है कि दुर्घटना के पहले ही आप लोग रो रहे, कैसे विचित्र लोग, बोले अभी कुछ भी नहीं हुआ और फिर आप लोग आंसू बहा रहे हैं। तब फिर वो लोग रोते रोते बोलते हैं कि आज तक कोई लौट करके नहीं आया, इसलिए हमें बहुत घबराहट हो रही है और संदेह के कारण हम लोग, बोले कि अभी मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूं और मैं सुबह फिर मिलूंगा तुमसे, तुम काहे के लिए घबराते हो। तो फिर खैर भरे मन से सब लोग धन्य कुमार को वहां विदा करते हैं, और वो लोग जब देखते रहते हैं, थोड़ी दूर तक धन्य कुमार आगे चला जाता, अंधेरा हो ढली गया था, दिन ढली गया था, और फिर ये लोग सब दुखी मन से वापस लौटते हैं। धन्य कुमार राक्षस भवन की तरफ आगे बढ़ता है और राक्षस भवन की तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। और जब आगे बढ़ता है वहां देखता है कि बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, बहुत सारे चमगादड़, जो एक पक्षी जैसा होता है प्राणी, चामा चिड़ियों। तो सब देखते देखते धन्य कुमार आगे बढ़ता है, और फिर उसके मन में वो बात स्मरण में थी कि राजा का ऐसा निर्देश है कि जो ये रात भर यहां पर ठहर कर आएगा उसको आधा राज्य और राजकुमारी दी जाएगी। तो ठीक है, स्थान में जैसा भी हो स्थान, मुझे रात भर इसके अंदर जाना है, अंदर ठहरना है। तो फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा बहुत जमाने से बंद था, जंग लगे हुए उसके किवाड़ थे, और फिर पहले हिलाने की कोशिश करता है। अंदर वास्तव में एक राक्षस रहता था। जैन शास्त्रों के अनुसार राक्षस देवों का एक भेद है, और राक्षस नरभक्षी अथवा रक्तपान करने वाले अथवा कुरूप आकृति वाले, डरावने और बहुत खूंखार प्रकृति के, ये सारे विशेषण जो लोक में प्रचलित हैं, शास्त्रों में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि उनको कषाय आ जाती है, यदि वो किसी को परेशान करना चाहते हैं, तो वो अपना डरावना रूप बना सकते हैं, लेकिन उनका जो मूल रूप होता है वो सर्वांग सुंदर देवों का रूप होता है। तो जब राक्षस देव को ऐसा एहसास हुआ कि कोई बाहर है द्वार के, तो वो अंदर से आवाज, भयंकर आवाज में पूछता, कौन है? तो धन्य कुमार ऐसे दरवाजे को धकेलता हुआ कहता है कि मैं धन्य कुमार हूं। राक्षस एकदम धन्य कुमार का नाम सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाता है, और फिर मन ही मन विचार करता है कि इतने लंबे समय से मैं इस भवन की जो रक्षा कर रहा हूं, मेरे इंद्र ने कहा था कि इस भवन की रक्षा करते रहना, धन्य कुमार के सिवाय अगर कोई आए तो उसको ठिकाने लगा देना, बोले। तो राक्षस एकदम स्वागत करता है, आओ आओ आओ, बोले कि आपके लिए तो मैंने यहां पर कितने लोगों को ठिकाने लगा दिया, आप आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है। धन्य कुमार ऐसे देखता है तो उसकी आभा थी उस देव की, और फिर खूब अच्छे से अंदर एक बढ़िया आसन दे करके बैठालता है। धन्य कुमार कहता है कि मैं शाम को सामायिक करता हूँ, गुरुजी से मैं मिल करके आया था, उन्होंने कहा था कि दिन भर कुछ भी करते रहो लेकिन शाम को दिन ढलते समय सामायिक अवश्य करना, तो मैं सामायिक करता हूँ, इसलिए अभी मैं पहले सामायिक करूँगा, फिर बाद में जो भी आपको चर्चा करना हो करना। तो वहां पर उस आसन पर बैठ करके धन्य कुमार सामायिक करता है। कैसे सामायिक करता है? तो पूर्व दिशा में विराजमान प्राग दिग्विदिगंतरतः केवली जिन सिद्ध साधु गण देवाह ये सर्वर्थ समृद्धा योगी शास्तान हम वंदे, जितने भी पंच परमेश्वरी हैं पूर्व दिशा में और फिर विदिगंतरतः पूर्व दिशा के आजू बाजू की दिशाएं होती है, दाहिनी तरफ आग्नेय दिशा होती है, तो वहां इन दिशाओं में विराजमान जो पांचों परमेष्ठी हैं उन सबको मैं नमस्कार करते हुए सामायिक का संकल्प लेता हूं। सामायिक में मैं पांच पापों का पूर्णतः त्याग करता हूं और आर्त रौद्र ध्यान का भी त्याग करता हूं। समता धारण करूंगा सब जीवों के प्रति, संयम के प्रति प्रशस्त भावना रखूंगा। फिर दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण दिग्विदिगंतरतः केवल जिन सिद्ध साधु गण देवाह ये सर्वर्धि समृद्धा योगी शास्तान हम वंदे, दक्षिण दिशा में विराजमान पांचों परमेष्ठी और उसकी जो विदिशा है दक्षिण के आगे कौन सी है, नैऋत्य, नैऋत्य, उस विदिशा में भी विराजमान जितने परमेष्ठी हैं और रिद्धिधारी बड़े बड़े महामुनि हैं गणधर देव आदि हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और सामायिक स्वीकार करता हूं। सब सावज्ज जोगम पच्चखामी करेमि भन्ते सामायिम, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं और पांचों पापों का और मन वचन का एक ही पाप पूर्ण प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। इसके बाद फिर और जो आगे की दिशा है पश्चिम, ये क्या है कि सामायिक करते समय इस प्रकार दिशाओं का क्रम जो चलता है, पूर्व दिशा फिर उसके दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा, दक्षिण से दाहिनी तरफ पश्चिम दिशा और पश्चिम से दाहिनी तरफ उत्तर दिशा, इस क्रम से परमेष्ठियों की वंदना की जाती है। इस वंदन विधि को दिग वंदना कहते हैं, दिग वंदना। तो पश्चिम दिग विधिगंतरतः केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी शास्तान हम वंदे, तो पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा में विराजमान पांचों परमेष्ठियों के लिए और रिद्धिधारी महान साधुओं को नमस्कार करके मैं सामायिक स्वीकार करता हूं। फिर वहां से उत्तर दिशा आती है, पश्चिम के बाद कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, दाहिनी ओर मुड़ोगे तो उत्तर दिग्विदिगंतरतः केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी शास्तान हम वंदे, और उत्तर दिशा के बाजू वाली जो दिशा है उसका नाम है ईशान दिशा। ईशान दिशा अंतिम दिशा है, पहली दिशा पूर्व है और अंतिम दिशा जो है ईशान दिशा है। इन सभी दिशाओं में विराजमान पांचों परमेष्ठियों की भक्ति पूर्वक अढ़ाई जदीव दो समुद्रे सुपर्णारस कम भूमिसु, ढाई द्वीप दो समुद्र 15 कर्म भूमियों में आर्य खंडों के अंतर्गत और अन्यत्र जितने भी साधु हैं, जितने भी केवली हैं, जितने परमेष्ठी हैं उन सब के प्रति कृतिकर्म करते हैं। कृतिकर्म का अर्थ होता है वो पूरी विधि, क्या उस विधि में सबसे पहले बैठ करके प्रणाम किया जाता है, जैसे आप लोग मंदिर जी में आते हैं बैठते हैं दोनों पैर दोनों हाथ और मस्तक झुका लेते हैं तो कितने अंग झुक गए, पांच, तो इसको पंचांग नमस्कार बोलते हैं। माताओं बहनाओं के लिए पश्वर्द शैया इसकी विधि बताइए, भाइयों के लिए पश्वर्द शैया भी हो सकती है और फिर सीधा जो पंचांग नमस्कार है दोनों घुटने टेक दिए हाथ जमीन में लगाकर दोनों कोहनियां ऐसे लगाकर माथा नीचे जमीन पर लगा दिया, ये पंचांग नमस्कार। तो पश्वर्द शैया आप लोग जानते ही होंगे कि जो जिसको गवासन बोलते हैं वर्तमान में, गवासन में क्या होता गाय जैसे अपने पैर ऐसे बाजू में रख करके बैठती है, रखती है कि नहीं, आपने देखा हो कई बार, अभी बाहर देख लेना जाकर के कभी, तो गाय जैसे अपने दोनों पैर पीछे के बाहर रख इस बाजू में रख करके फिर सामने के पैर ऐसे टिका देती है जमीन पर बैठ जाती है, उसी प्रकार गवासन में जब भी बैठ करके नमस्कार किया जाता है तो फिर दोनों पैरों को एक तरफ रखना पड़ता है और फिर दोनों हाथ धरती पर लगाकर सिर झुकाकर नमस्कार किया जाता है। जिनका शरीर थोड़ा ज्यादा विस्तृत है तो उनको कभी कभी माथा नीचे जमीन पर लगाने में कठिनाई होती है, लेकिन झुकाने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार पंचांग नमस्कार से ये विधि प्रारंभ होती, कृतिकर्म बोलते हैं इसको। पंचांग नमस्कार किया पूर्व दिशा में, उसके बाद में फिर नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल आदि पूरा पढ़ करके, फिर ढाई द्वीप आदि का स्मरण करके, और जितने भी मनुष्य क्षेत्र में परमेष्ठी हैं उन सबको, और सारे लोक में सिद्ध परमेष्ठी तो सिर्फ मनुष्य लोक में तो नहीं है, यहां से जो लोग अभी मोक्ष जा रहे हैं तो वो सिद्ध पद को प्राप्त हुए लेकिन एक समय में वहां पहुंच जाते हैं लोकाग्र में। तो इन सब की वंदना करते हुए, इनकी विनय करते हुए, फिर करेमी भन्ते सामायम, फिर संकल्प लेते हैं। कैसे संकल्प लेते हैं? हे भगवन, सामायम करेमी, मैं सामायिक करता हूं। सर्व सावज्य योगम पच्चखामी, सर्व सावध्य योग यानी पांचों पापों का मन वचन काय से पच्चखामी त्याग करता हूं। जावत जीवन जावन नियमम, जब तक मैं यहां समता धारण करता हूं तब तक इसका मैं त्याग करता हूं, और अरहंतों की पर्युपासना करता हूं, और फिर सब जो आदि तीर्थंकर है या फिर धर्म के चतुरांग चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान को धम्मवर चाउरंग चक्रवर्ती ये विशेषण दिया है। इसका मतलब ये होता है कि धर्म के जो चार अंग है, वैसे तो धर्म दो भागों में बंटा है, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म, लेकिन इसमें जो सर्वोच्च स्थान होता है वो मुनि धर्म पालन करने वालों में यदि पुरुष पर्याय है तो निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी साधुओं का स्थान होता है, और फिर यदि माता बहन की पर्याय है तो फिर वो उन महाव्रतों को धारण करते हुए आर्य का पद में अवस्थित रहती हैं। आर्य का पद में अवस्थित रहती हुई महाव्रतों का पालन करती हुई जो साध्वियां रहती हैं, साधना करनी करती हैं रत्नत्रय की, उनका गुणस्थान मुनियों के गुणस्थान के समकक्ष नहीं होता। उसके कुछ दूसरे कारण है, सैद्धांतिक कारण है कि उस पर्याय में पंचम गुणस्थान तक के प्रगति हो जाती है, और फिर बाकी इधर देखें अपन श्रावक धर्म की अपेक्षा विचार करें तो श्रावक धर्म की अपेक्षा विचार कर तो इसमें सबसे आगे कौन है? श्रावक की कितनी प्रतिमाएं होती हैं?